ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवत का आस्वादन करेंगे और यहाँ पर जो गंगा धारा बह रही है वो छठवें स्कंद की है। यहाँ पर आज 33वां श्लोक लेंगे। सभी लोग श्लोक पीछे दोहराएंगे। कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सद्दसत्तमाः। कस्य किसके सेवक वा अथवा कुतः कहाँ से आयाताः तुम आए हो। कस्मात किस कारण से अस्य इस अजामिल का ले जाना। निषेधथ हम मना कर रहे हैं। किम क्या देवाह देवता उपदेवाह तथा उपदेवता वा अथवा यूयम तुम सभी किम क्या सिद्ध सत्तमाह सिद्धों या शुद्ध भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद महाशयो तुम किसके सेवक हो कहाँ से आए हो और अजामिल का शरीर छूने से हमें क्यों मना कर रहे हो। अच्छा उसमें हमें होना चाहिए तो हम लिख दिया। अपनी अपनी पुस्तक में सुधार लीजिएगा। है ये बाई मिस्टेक हिंदी वाले वर्जन में ऐसा हुआ है। इंग्लिश वाला वर्जन प्रभुपाद का ठीक है, ये हिंदी वाले में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो क्या तुम लोग स्वर्ग लोक के देवता हो उपदेवता हो या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण शब्द सिद्ध सत्तमा है, जिसका अर्थ है सिद्धों में श्रेष्ठ। भगवत गीता में कहा गया है मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, लाखों पुरुषों में कोई एक सिद्ध अथवा दूसरे शब्दों में स्वरूप सिद्ध बनने का प्रयास करता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आध्यात्मिक आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। आजकल प्रायः सारे लोग इस तथ्य से अनजान हैं, किंतु जो इसे समझता है वह सिद्धि प्राप्त कर चुका होता है, अतः सिद्ध कहलाता है। जब मनुष्य समझता है कि वह सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा का भिन्नांश है और तब सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा की भक्ति में अपने को लगाता है तो वह सिद्ध सत्तम बन जाता है, तब वह वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में रहने का पात्र बन जाता है। इस प्रकार सिद्ध सत्तम शब्द मुक्त शब्द शुद्ध भक्त को वर्णित करता है। चूँकि यमदूत यमराज के सेवक हैं जो कि स्वयं सिद्ध सत्तमों में से एक हैं, अतः वे जान गए कि सिद्ध सत्तम देवताओं तथा उपदेवताओं से ऊपर है और इतना ही नहीं इस जगत के सारे जीवों से ऊपर है। अतएव यमदूतों ने विष्णु दूतों से पूछा कि वे लोग उस स्थान पर कैसे उपस्थित हैं यहाँ जहाँ एक पापी मनुष्य मरने वाला है। यह भी ध्यान देने की बात है कि अजामिल अभी मरा नहीं था, क्योंकि यमदूत उसके हृदय से आत्मा निकालने का प्रयास कर रहे थे और आत्मा को निकाल नहीं सके थे, अतएव अजामिल अभी मरा नहीं था। इसका उद्घाटन बाद के श्लोकों में होगा जब यमदूतों तथा विष्णु दूतों के मध्य वाद विवाद चल रहा था तो अजामिल अचेतन अवस्था में था। वाद विवाद से इस बात का निर्णय होना था कि अजामिल की आत्मा पर किसका दावा होगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण तन्य नामने गौरत्विषे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद तगदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कस्य वा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्ध सत्तमाः। तो आप सभी को पता है कि प्रसंग क्या चल रहा है। अजामिल जिसके नाम का मतलब ही होता है, दो मतलब है अजामिल के। सब लोग हम सब एक्चुअल में अजामिल हैं एक मतलब से, और यदि सिद्ध हो गए सिद्ध सत्तम हो गए तब पर भी अजामिल ही रहेंगे। कैसे? संस्कृत में अजा शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म नहीं होता, वो भी होता है, और अजा शब्द का अर्थ होता है माया भी। अज अज अजा श्वेताश्वतर उपनिषद में 3 बार आया है, अज अज अजा। एक अज जीव भी है और एक अज कौन है, ईश्वर भगवान, और एक है अजा। अजा मतलब माया, न जायते इति अजा, न जायते इति अजह। पुरलिंग बोलेंगे तो अजह होगा, स्त्रीलिंग बोलेंगे तो टाप प्रत्यय करके अजा शब्द बनेगा। तो इसलिए अजा और मिल, संस्कृत में मिल धातु का अर्थ होता है मिलना, टू मीट, या किसी के साथ एक साथ आकर के मिल जाना परस्पर। तो एक तो अजा मतलब माया, जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्म हैं उन कर्मों के माध्यम से जो अजा में जाकर के मिल गया है, अजा के साथ मिला हुआ है, अजा मतलब माया। ज्ञाज्ञ द्वावजा विषा निशा ऐसा करके एक बहुत बड़ा मंत्र है, पहले अध्याय में 12वां मंत्र है, 9वां मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद में, उसमें बोलते हैं कि वो अजा मतलब माया। तो अजा के साथ, क्योंकि तीनों का जन्म नहीं होता है, तीनों जन्म रहित हैं, किसी ने किसी को बनाया नहीं, ये बात सिद्ध है भागवत से भी, उपनिषदों से भी, सभी से। जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भागवत उपनिषद आदि नाम लेकर के, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि मैं या कोई वक्ता अपने जेब से नहीं बोल रहा है, हम जो भी बोलेंगे अपने अनुभव से बोल सकते हैं, और हमारा अनुभव गलत भी हो सकता है क्योंकि हम माया में हैं। इसके लिए शास्त्रों का प्रमाण इसीलिए दिया जाता है कि हम नहीं बोल रहे हैं, वो आचार्य बोल रहे हैं, उन आचार्यों का कथन है जो कि सिद्ध सत्तम हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं। इसके लिए तस्मादेतज गेयम नित्यमेव आत्म संस्थितम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा। ये तीन, भोक्ता भोग्य प्रेरितारा मतलब यही, भोक्ता मतलब जीव और भोग्य मतलब प्रकृति, और जो प्रेरित करने वाला जो शक्ति प्रदाता वो ईश्वर, तीनों के तीनों वो कैसे हैं, आज हैं, तीनों आज हैं। तो एक जो आज हम लोग, वो आज जाकर के अजा में मिल गए, तो हम हो गए अजामिल, है कि नहीं, अजामिल हो गए। तो अजामिल हो गए तो ऐसी स्थिति आ गई, पत्नी पुत्रों के साथ में पूर्ण जीवन व्यतीत कर दिए, केवल संसार के विषयों को एकत्रित करने में और पाप को एकत्रित करने में, भोगों में। तो पूर्ण रूप से एक्चुअल में हम लोग सारे के सारे अजामिल हैं। कोई है अजामिल के ऊपर? अभी भी अजामिल रहेंगे और बाद में भी अजामिल रहेंगे, क्योंकि बाद में जो अज है उनके साथ जाके मिलेंगे। यहाँ मिलने का तात्पर्य वैसे नहीं जैसे मायावादियों का, एक बूंद समुद्र में जैसे मिल गई तो समुद्र हो गया, ऐसा मिलना नहीं। मिलने का मतलब जैसे दो व्यक्ति परस्पर बिछुड़ जाएं तो मिल जाते हैं, एक पुत्र अपने पिता से जैसे मिल ले, इस प्रकार का मिलना। तो एक अज दूसरे से अज में जाकर के मिलेगा तो वो भी अजामिल हो जाएगा, फिर उस समय हो जाएगा अजमिल नहीं होगा, क्या होगा, अजामिल में फिर वहां पर जो आ शब्द है वो मिल के साथ जोड़ेगा, उपसर्ग बन जाएगा। जैसे आगमन में आ उपसर्ग लगता है कि नहीं, आवाहन आमोद इस प्रकार के शब्द बनते हैं ना आ लग करके, तो अज के साथ में आ करके मिल जाएगा। अजेन आगत्य असमंतात मिलती अजामिल, जो आज के साथ में आकर के, वापस आकर के, जो रियल फादर है, जो वास्तविक पिता हैं, उनके साथ आकर मिल जाएगा। इसलिए वो आज के दो अर्थ हैं, अभी भी अजामिल है और बाद में भी अजामिल रहेंगे, नाम नहीं चेंज होगा, ये पक्का हमारा दीक्षा का नाम हो गया, ये परमानेंट नाम है अजामिल। तो इसलिए इस अजामिल की भी कथा इसी प्रकार से है। था तो उत्तम ब्राह्मण, वेदज्ञ था, लेकिन वेद पुराण इतिहास केवल जान लेने से किसी को भगवत प्राप्ति तो हो नहीं जाएगी। कुसंग कभी भी पकड़ सकता है, कभी भी। सुखदेव गोस्वामी ने चैलेंज किया है भागवत के 5वें स्कंद के 6वें अध्याय के 3रे श्लोक में, न कुर्यात करहिचित सख्यम है नवस्थिते मनसी। इस मन का कभी भी किसी साधक को विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया इसी में 5वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला प्रश्न है कि नूनम भगवो अध्यात्म, जो कहते हैं कि जितने भी लोग अध्यात्म वेत्ता हैं वो सारे के सारे लोग जो बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े सिद्ध हो चुके, तो क्या वो लोगों को तो माया नहीं पकड़ेगी, ऐसा परीक्षित महाराज का कथन था। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते सावधान करते हैं, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी भी इस मन का जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो कितना भी उत्तम साधक क्यों ना हो वो माया में जा सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी तीसरे श्लोक में 5-6-3 में कहते हैं, न करहिचित सख्यम मनसी है नवस्थित है, ये इस जब तक ठीक से अवस्थित ना हो जाए तो इस मन का विश्वास नहीं करना है। इसलिए अंत समय तक भगवत प्राप्ति तक साधक बिल्कुल विश्वास मन का करके नहीं जीता है, वो भगवान पर निर्भर होकर जीता है। तो इसीलिए अजामिल की स्थिति हम सब की है, हम अपने मन का विश्वास, जिसने सोचा कि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं बहुत कुछ जान गए हैं तो माया नहीं पकड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक 4-6 अक्षरों को यहाँ से वहाँ पलटा देने से किसी को माया नहीं पकड़ेगी ऐसा नहीं है। तो अजामिल इसी प्रकार का ब्राह्मण था, लेकिन सात्विक संस्कार उसके थे, ब्राह्मण होने से सात्विक संस्कार थे, लेकिन फिर भी आँखों का जो विषय था उसको पकड़ लिया, बाद में संपूर्ण शरीर के विषय घेर लिए, एक आने से सारे अपने आप जितने मित्रगण हैं वो अपने आप आ जाते हैं, तो ये कंडीशन हो गई। तो उस अजामिल को जब यमराज ले जाने लगे तो ले जाते समय सबको तो लेकर के जाते ही यमदूत आते ही हैं, लेकिन सबको दिखाई पड़ते नहीं हैं। उसका इतना संस्कार था कि कम से कम यमदूत उसको दिख गए, कोई ले जा रहा है ऐसी फीलिंग आ गई। हमको तो ऐसा फीलिंग अब मरने वाला ही जानता है, ये तो मर करके मरा ही नहीं था, इसके लिए इसकी घटना आ गई यहाँ पर। अब मरने के समय के जितने भी अनुभव हैं, जो मरता है उसी को पता है और किसी को नहीं मालूम है। बाकी जो मर गया तो मर गया, महापुरुष हुआ कि कुपुरुष हुआ क्या हुआ भगवान जाने। हम लोग तो केवल अनुमान लगाते हैं कि इसने अच्छी भक्ति किया तो ये जरूर भगवान के धाम गया होगा, अब वो आकर के बताया नहीं किसी ने आज तक, है ना। कोई नरक गया स्वर्ग गया का किसी ने बताया नहीं, लेकिन हम उसके व्यवहार को देख करके ऐसा अनुमान लगाते हैं। और ठीक है, अनुमान शास्त्रों में बताया है कि ऐसे व्यक्तियों की ऐसी गति होती है, उसके अकॉर्डिंग सही भी है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो अजामिल की स्थिति भी इसी प्रकार से थी, बेचारा विद्वान तो हो गया लेकिन अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाया, क्योंकि इंद्रियों पर संयम सबसे सबसे जो दुष्कर कार्य है वो इंद्रियों के पर संयम पाना है। इंद्रियों पर मतलब मन पर, सारी इंद्रियों का राजा मन है, क्योंकि सबसे पहला विचार कहाँ स्टार्ट होता है, मन में, और वहीं पर समाप्त होता है। वेद तो कहता है कि मन एव कामः, मन ही काम है, लोभ है, क्रोध है, सब मन ही है, मतलब मन में है। तो इसी प्रकार से तो अजामिल की स्थिति हो गई। अभी उसको जब निकालने लगे तो बेचारा परेशान हो गया। वस्तुतः मृत्यु के समय में वो पीड़ा, मैं आपको कई बार बता चुका है ये बात, कि वो पीड़ा इतनी ज़्यादा अनुभव होती है, वो पीड़ा कोई बिच्छू काटने की नहीं है, लेकिन ऐसा वर्णन किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे 10,000 बिच्छू काटे। अब भगवान जाने कितने काटते हैं उस समय, लेकिन उस समय का जो अनुभव बहुत भयंकर है। अनुभव किस लिए भयंकर है, किस लिए है, किसी को याद है, पहले मैं कई बार बताया ये बात कि ऐसा क्यों लगता है कि 10,000 बिच्छू काटे। कोई 10,000 बिच्छू नहीं काटते हैं, लेकिन अनुभव ऐसा होता है कि जैसे बहुत कष्ट है। कोई मरते समय किसी के बिच्छू तो रहते नहीं चारों तरफ, तो ऐसा कौन सा बिच्छू है अंदर वाला आकर के जो काटता है। ये जो चीज़ है, ये आसक्ति है, ये जो आसक्ति है एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने की, या एक स्थान पर अटैच्ड हो जाने की, आसक्त हो जाने से वो जो कष्ट है, उस कष्ट को अब कैसे बताएं कि कितना कष्ट है। तो कह दिया कि 10,000 बिच्छू जितना काटते हैं उतना कष्ट है, अब बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो क्या करेंगे ऋषि लोग, कैसे समझाएं उस अनुभव को। तो उस अनुभव को बताए कि आसक्ति के द्वारा। वस्तुतः यहीं पर किसी व्यक्ति को कहें कि बेटा जा जरा सामान ले आ, एक बार, दो बार, तीन बार, पाँच बार, 10 बार, 11वीं बार बोले आप मत बोलना, एक बार में बोलो जितना लाना हो ला दूंगा। सोचो एक छोटे स्थान से वहाँ जाने में हम लोग इतना कष्ट का अनुभव करने लगते हैं, तो होता है नहीं। आपसे कोई बोले थोड़ा वो ले आना, थोड़ा चाय पत्ती लाना, कोई शक्कर लाना, दूध लाना, प्रसाद लाना, 10 बार आप, अब ऐसा है कि जितना भी लिस्ट बना दो एक बार में ला के रख दूंगा। इतना कष्ट एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में इतना कष्ट होने लगता है। तो आत्मा भी इस शरीर में चाहे कितना भी जर्जर हो, मर रहा हो, लेकिन इतना आसक्त हो जाता है जीव कि नहीं जाना चाहता, नए शरीर देने पर भी, जो कि मरने के बाद नया मिलने वाला है, वृद्ध से एक बालक का शरीर, शिशु का शरीर प्राप्त होगा, फिर भी नहीं चाहिए। कपिल देव बोलते हैं इस बात को तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में कि यस्याम यस्याम योनिम अनुब्रजति, जिस जिस योनि में जीवात्मा जाता है, कहते हैं कि तस्याम तस्याम निर्व, उसको उसी उसी में जाकर के निवृत्ति प्राप्त करता है। एक होती है शब्द निवृत्ति और एक शब्द होता है निर्वृत्ति। निवृत्ति का मतलब अलग हो जाना और निर्वृत्ति का मतलब होता है सुख। निर्वृत्ति मतलब सुख और एक होता है निवृत्ति मतलब हट जाना, अलग होना, दूर होना। तो कहते हैं कि जिस जिस जगह पर जाता है उसी में इतना अटैच हो जाता है कि जाना ही नहीं चाहता है। अपने मन से कोई आ जाए समय पर तो यमदूतों को क्यों आना पड़े, आएगा ही, निकलेगा ही, निकलना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो यमराज हैं, जो दूत को भेजते हैं, तो इतना कष्ट का अनुभव होता है। वो कष्ट का 10,000 कोई बिच्छू नहीं काटती है, कुछ भी नहीं है। वो जो आसक्ति है देह में, किसी का पुत्र का देहांत होता है, किसी के पति का, उसी में कितना रोना आता है, कितना कष्ट का अनुभव होता है। क्यों होता है? अत्यधिक इतना कष्ट कि आंखों से आंसू 5-6 महीने तक कई माताओं के निकलते हैं। मरने का छोड़िए, किसी का संत हो जाए, भक्त हो जाए, किसी का बालक, तो उसी में कई महिलाएं बहुत रोती हैं जो भक्त नहीं हैं। ऐसे केस आप लोगों को भी पता है बहुत सारे, रोती रहती है मेरा बेटा चला गया, ऐसा कितना वियोग। तो इतना ही तो वियोग की आवश्यकता है भगवान के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो ये आसक्ति के कारण से इतना असुर प्रवाह इत्यादि होता है और आसक्ति के कारण से वो पीड़ा का अनुभव होता है। तो वो पीड़ा का अनुभव हो रहा है मरते समय, सबको होता है। तो जब यमदूत उसको खींचने के लिए आए, तो चूंकि उसने भगवान का नाम आभास में ही ले लिया, फिर भी वो काम कर गया। तो कई बार हम लोगों के भक्त लोग कहते हैं कि वो प्रभु जी नाम लेते लेते शरीर छोड़ गए, तो उनको भी उनके बीच में भी घमासान युद्ध हुआ होगा, यमदूत आए होंगे। लेकिन ऐसा केस सब जगह देखने को नहीं मिलता है, और होगा भी तो हमको क्या पता। सामान्य रूप से किसी को दिखा, क्योंकि दैवी वाणी और देवता लोग तो वैसे भी हमारे दृष्टि से अगोचर हैं। तो यदि किसी के साथ ऐसी घटना घट भी जाती होगी तो हमको ज्ञात नहीं है, होता भी है। तो इसलिए अजामिल के लिए जब विष्णु दूत आए तो अचानक उनको देख करके इनको लगा ये कौन से महापुरुष आ गए। तो इसलिए उन्होंने ये प्रश्न छेड़ दिया कि अच्छा तुम लोग आकर के अचानक कैसे रोक रहे हो, दंड को धारण करने वाला, दंड देने वाला तो एक ही है, और उसके बीच में आकर के इंटरप्ट कर रहे हो। तो इसलिए प्रश्न किया कि कस्यवा माने कस्य, कस्यवा माने किसके, किसके क्या, तुम लोग किसके सेवा को, हम तो पता है यमराज के सेवक हैं, तुम और किसी के हो क्या। इसलिए प्रश्न करें आश्चर्य में, कस्य कस्यवा किसके हो, हमारे तो नहीं हो, इसलिए वा शब्द का प्रयोग किया। कस्यवा अकुतः, कुतः क्यों, कहाँ से, क्योंकि हमको तो पता है हम कहाँ से आए हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, इसलिए कुतः। वो आयाता माने आगता, आप पहुँचे हो, पहुँच ही गए हो पूरा। संस्कृत में या धातु है, उसमें आ उपसर्ग करके आयात शब्द बनता है ता प्रत्यय करने से। तो कहते हैं कि आयाता कुतः आयाता, कहाँ से आए हो, और कस्माद, कस्माद माने किस कारण से, किस लिए। अस्य निषेधता, अस्य निषेधता मतलब पूरा शब्द नहीं लिखा यहाँ पर, केवल अस्य, अस्य माने इस व्यक्ति के, इस इसको ले जाने में, अस्य नेतुम, इसके ले जाने के लिए आप निषेधता, यूयम निषेधता, तुम लोग क्यों निषेध कर रहे हो, क्यों निषेध कर रहे। इसलिए यहाँ पर हम मना कर रहे हैं नहीं लिखा ना, हमें मना कर रहे हैं, आप लोग हमें मना कर रहे हैं, एक ये सकर्मक क्रिया है, तो इसलिए संस्कृत हिंदी वाले में थोड़ा गलत छप गया है, हमें लिखना है। कई बार ऐसा होता है हिंदी वाली भागवत में और भगवत गीता में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो वो गलतियाँ बहुत सारी आ जाती हैं। अब बताइए, अभी संस्कृत पढ़ने का यही तो लाभ है, अब पढ़ लिए तो मालूम पड़ा होगा था, अब यही परंपरा से जो नहीं पढ़ेंगे धीरे 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 करके लुप्त हो जाएगा, अब उल्टा सीधा जो बोलेंगे सब में सही है, अब कोई भी उल्लू बना जाएगा, कुछ भी अर्थ कर देगा अनर्थ। इसलिए संस्कृत आदि का ज्ञान क्यों आवश्यक है, कि कोई भी त्रुटि ना हो, जो चीज़ अर्थ बदल जाएगा, एक छोटी सी त्रुटि में तो वृत्रासुर का केस आप लोगों को पता है, केवल एक मात्रा के उच्चारण मात्र से गड़बड़ हो गया, आदि उदात्त की जगह पर अंत्योदात्त बोल दिया, ई इंद्रा ऐसा बोलना चाहिए तो इंद्रा ऐसा खींच दिया, इतने मात्र में समास बदल गया, वो इंद्र उसको मारने वाला हो गया। तो इसलिए ये तो खैर मंत्र वैदिक मंत्र में नहीं आता है, फिर भी शुद्धि होनी जरूरी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो तो अच्छा है। तो कहते हैं यूयम निषेधतः, आप लोग क्यों मना कर रहे हो, और फिर किम देवाह, आप लोग देवता हो, लग तो ऐसे रहे हो चमक धमक से, बराबर बढ़िया से हार पहने हो, कुंडल सब कुछ लगा करके, बाजूबंद लगा कर, मुकुट इत्यादि धारण करके, ऐसा लगता है जैसे देवता हो। तो इसलिए कहते हैं किम देवाह, दिव्यति इति देवाह, जो देव चमकता है, देव धातु के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ होता है चमकना, जो प्रकाशित जब आए तो इतना प्रकाश हो गया, तो इसलिए प्रश्न किया किम देवाह, आप सब क्या देवता हो, देवताओं जैसे ऐसा पूरा शरीर चमक रहा है, वस्त्र चमक रहे हैं, सब कुछ चमक हो रही है, सब कुछ चमक रहा है, इतना प्रकाश हो रहा है। तो कहते किम देवाह, फिर कहते किम उपदेवाह, तो यदि देवता नहीं हो तो मानो उन्होंने पूछा नहीं, कुछ बोला ही नहीं, तो बोला नहीं इसका मतलब नया प्रश्न, तो क्या ये हो, तो इसलिए बोलते हैं क्या उपदेवाह, क्या उपदेव हो, उपदेव मतलब देवताओं से नीचे वाली जो कैटेगरी है उपदेवों की होती है, माने देवस्य समीपम उपदेवः, अव्यय भाव समास है, तो देवस्य या देवानाम समीपम उपदेवः, देवताओं के जो समीप, मतलब देवता नहीं है लेकिन देवताओं के पास, उसके नीचे कैटेगरी वाला, इसलिए कहते हैं किम उपदेवः, तो उपदेव हो क्या वा, फिर यहाँ पर या की जगह पर वा करना है, गलत छप गया है, क्योंकि याह शब्द लिख दिया है, याह का मतलब होता है स्त्रीलिंग में जो, या जिसने, या जिन्होंने, जिन महिलाओं ने, ऐसा करके, या जिनको स्त्रीलिंग शब्द में, इसलिए यहाँ पर तो उसका कोई संबंध ही नहीं है शब्दों के साथ, हैं कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए वा अथवा इस अर्थ में आया, किम देवा उपदेवा वा, यूयम, या फिर ये भी हो सकता है, ये शब्द भी हो सकता है याह की जगह पर, कि क्या तुम उपदेव हो या देव हो जो हम लोगों को रोक रहे हो, तो इसलिए वहां पर ये शब्द चल जाएगा याह की जगह। तो कहते हैं कि वा, लेकिन कहते हैं वा यूयम तुम सब किम सिद्ध सत्तमाह, या सिद्ध सत्तम हो, या सिद्ध भक्तों में श्रेष्ठ हो, एक सिद्ध कैटेगरी भी है, सिद्ध जो है उपदेवों के नीचे आते हैं, वो एक कैटेगरी भी है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि एक सिद्ध प्रभुपाद ने जो और आचार्यों ने अर्थ दिया कि सिद्धों या शुद्ध भक्तों में श्रेष्ठ हैं, तो इतने सारे उनको रोकने पर, लेकिन ये जो घटना घट रही थी, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय जो अजामिल था वो अचेतन था, आत्मा अभी बाहर शरीर से गई नहीं थी, वो वहीं के अंदर ही थी, वो बस आए थे खींचने के लिए, उतने में वो लोग आकर के रोको रुक जाओ, तो इस प्रकार से बस अजामिल अचेतन अवस्था में ही उस दोनों के जो सत्संग, दोनों की जो बातें थी वो सुन रहा था आनंद से। ये कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है, सब जीवों को नहीं मिलता है, ये अजामिल की घटना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है, सारे व्यक्ति अजामिल तो है ही है नहीं, अभी कोई अजामिल का गलत ही अर्थ नहीं लेना है, माया की अवस्था में जब तक रहेंगे तब तक तो अजामिल है ही है, ये वाले अजामिल, बाद में इससे उत्तम अजामिल हो जाएंगे। तो कहते हैं प्रभुपाद ने यहां लिखते हैं कि अजामिल मरा नहीं था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा, उसने केवल सुना, सुनने मात्र से इतना लाभ हो गया, भगवान में इतनी रुचि जाग गई कि वो जाकर के बाद में भक्ति किया। अब जिनकी विचारों की इतनी सारी कथा सुनने के बाद भी रुचि नहीं जागती, उनके लिए क्या उपाय है। जीव गोस्वामी ने एक बार ऐसा मतलब अटीका में एक जगह लिखा है कि जो व्यक्तियों की भगवान में रुचि ना हो, भगवान के नाम कीर्तन आदि में रुचि ना हो, तो क्या करना चाहिए। अब इनकी तो रुचि जाग गई सत्संग के माध्यम से, हम लोग तो कितना सत्संग सुनते हैं तो भी उतनी उत्कृष्ट रुचि नहीं जागती है कि सच में हरिद्वार जाकर, वृंदावन में ही रहकर, हरिद्वार यही सबसे बड़ा द्वार है, तो यहीं रहकर के खूब उत्कृष्ट भजन करें। मेरा पर्सनल, इतनी इतनी सुनते, इतना जानते, इतना सुनते तो भी उतनी बुद्धि नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी साधना है जो जिसमें हम लोग मिस कर रहे हैं, जो सही तरीके से नहीं हो रही है। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति कुछ चबाता है, मान लीजिए चावल दाल रोटी खा रहे हैं, खाते खाते अचानक कंकड़ आता है, तो आप क्या करते हैं? हम लोग तुरंत निकाल के फेंकते, पूरा उगल देते हैं उसको। क्यों उसको बाहर कर देते हैं? अब मालूम है कि अंदर जाएगा तो गड़बड़ करेगा, पथरी बनेगा और पता नहीं क्या क्या बनेगा। कंकड़ खाने से पथरी हो चाहे ना हो, लेकिन जो और अन्न है उनको खाने जरूर होती है है ना। कबूतरों को भी पथरी नहीं होती है, कहते कंकड़ का दाना चुभता रहता है, लेकिन कभी उसको पथरी की बीमारी नहीं है। और मनुष्यों को बिना पत्थर खाए ही पथरी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्थिति है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, वो चावल खाते समय कंकड़ जो गया तो हम उसका निषेध कर देते हैं, मुंह के अंदर जाने ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं जाने देते हैं? हमको पता है कि ये नीचे जाएगा तो कुछ कुछ नुकसान करेगा। इतना अच्छा ज्ञान है हमको कंकड़ के विषय में। बाकी साधना करते समय जो चाहिए भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण को श्री कृष्णमय बनाने के लिए क्या क्या निषेध हैं, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हमको पता होते हुए भी हम निगल जाते हैं उसको। आने दो, कोई बात नहीं है ना। सबको पता है कि ये काम करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग बहुत सहज है, बहुत सरल है, क्या इसमें बहुत कठिनाई है? लेकिन कठिनाई यही है कि जान करके अपराध कर देते हैं, गलतियां करते हैं। एक बार एक कुत्ता किसी कुएं में मर गया था। मर गया तो एक व्यक्ति गया पंडित जी के पास में। पंडित जी ने बोला, कहा कि अरे हमारे यहाँ कुत्ता मर गया है और क्या करें, बहुत दुर्गंध आ रही है। तो पंडित जी ने बोला, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का सबका पानी लाओ अलग अलग तीर्थों से, और ले जा करके वहाँ बढ़िया से आचमन कराओ, शुद्ध हो जाएगा। तो वो आदमी गंगा में, यमुना में, सरस्वती, गोदावरी, जितनी नदियाँ हैं, जितने जगह तीर्थों से, सब ला ला करके बड़ा भंडारा बनेगा कि आज उसी के पानी से सब कुछ होगा, सबको प्रसाद पवाएंगे। तो वो लेकर के आया और सब कुछ उसमें डाला, और डालने के बाद जब बाल्टी गई और निकाला तो वापस गंदा। वो पंडित जी भी आए थे जिन्होंने बताया उपाय, और उपाय बताया तो, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पाया। और बोला, अरे पंडित जी, आपने ही तो कहा था कि पानी गंगा यमुना डालो, सब मंत्र वंत्र पढ़ करके पवित्र हो, पवित्र हो, सब पवित्र हो जाता है, और इनमें तो बड़ी शक्ति है, गंगा के डालते ही शुद्ध हो जाएगा जल। देखिए, शुद्ध नहीं हुआ। तो उसने बोला, बेटा तुमने मेरी एक बात भूल गए, तुम कुत्ते को तो निकाला ही नहीं है, कुत्ते को निकाला नहीं और गंगा यमुना सरस्वती दुनिया भर का शुद्धिकरण के लिए यत्र वित्र डाल रहे हो, वो कैसे पूर्ण हो, कैसे शुद्ध होगा जल? तो कहने का तात्पर्य है कि इतना सारा सुनने के बाद भी उस पर कोई विचार नहीं है, कुछ न कुछ अपराध, कुछ न कुछ ऐसे कर्म होते रहते हैं जिसके बल पर भक्ति में, भगवान में मन कम लगता है। लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ननु एवम अपि मंद भाग्यानाम भगवत कथायाम रुचि नहीं उपजायते। कहते हैं जिनकी जिनकी भगवत कथा में रुचि नहीं होती है, उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए भागवत से श्लोक बोलते हैं कि जिनकी रुचि नहीं होती है वो लोग भी शुश्रूषो सत्यधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। श्रीधर स्वामी इसकी टीका में लिखते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों की भगवान के कथा में, कथा शब्द जब बोलेंगे तो कीर्तन में भी है, श्रवण में भी है, पूजा में भी है, क्योंकि जीव गोस्वामी ने जहाँ जहाँ श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ऐसा जो च शब्द आता है उसमें लिखते हैं चकारात अन्य जो उपचार हैं भक्ति के, वो भी मानना चाहिए। श्रवण कीर्तन तो है ही, साक्षात भक्ति, पूजन है और भी जो भी नमस्कार आदि सब उसमें ले लो। तो कहते हैं कि भगवान वासुदेव की कथा में रुचि होगी, कैसे होगी? जब कोई व्यक्ति पुण्य तीर्थों में जाएगा, जैसे वृंदावन है, द्वारका है, नवदीप मायापुर धाम है, ऐसे तीर्थों में जहाँ पर कथा चलती है, जब ऐसे स्थानों पर जाएगा व्यक्ति तो यहाँ वहाँ मंदिरों में कहीं ना कहीं प्रवचन चलता ही रहता है, तो वहाँ जाकर के बैठ जाएगा, या वहाँ पर तीर्थों में संतों का दर्शन होगा तो उनके साथ दो चार बात होंगी, या दो चार संत आपस में बैठ करके बात कर चीत जो करते हैं तो मन में अभिलाषा होगी कि मैं इतने संकथयंती, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो ऐसी सुनने की इच्छा होगी। जब ऐसी इच्छा होगी तो फिर उसमें रुचि आएगी, फिर सेवा, संतों की भी सेवा करेंगे और भगवान की भी कथा और सुनेंगे। तो इसलिए उपाय कि भगवान के जो तीर्थ हैं उनमें जाएंगे, जाकर के केवल ऐसे देखना नहीं है किसी भी चीज़ को। लोग जनरली जाते हैं और पत्थरों पत्थरों को देख करके मंदिर बड़ा सुंदर बना है। प्रभुपाद इस बात को कई बार ये बात बोले, वो जो 10वें स्कंद का जो श्लोक है कि जिसमें ऋषियों के पास जाकर के, तीर्थों में जाकर के भी यदि किसी ने ऋषियों का संग नहीं किया तो वो गोखर है। तो किसी भी तीर्थ में जाकर के भगवान की कथा, क्योंकि कथा किसी के संग से नहीं पैदा होगी, संग में रहने से जो संत लोग जो वचन बोलेंगे उसको सुन करके उसके चिंतन से आगे बढ़ेगा व्यक्ति। नहीं तो संतों के बड़े बड़े जो बड़े जटाधारी संत हैं उनके जुआ हुआ पड़ जाते हैं, नहीं जुए होते हैं, लीक होते हैं, उनको तो लाभ नहीं मिलता कथा का, उनकी तो भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवान के माला है, इनमें आके बैठ जाते हैं बहुत सारे भोरे छोटे मोटे है ना कीट, उनको तो लाभ नहीं होता, मुक्त नहीं होते हैं इस जन्म में। लेकिन क्यों, कारण है उसका, क्योंकि वो लोगों का जो उतना चिंता नहीं है उसके प्रति। हाँ, हो सकता है भगवान के देह से स्पर्श होकर के उनकी मनुष्य रूपता को प्राप्त हो जाए, ये हो सकता है, होता भी है। इसीलिए जागृत अवस्था में रह करके ही भगवान में कथा में रुचि पैदा हो, उसके लिए तीर्थों में जाएं तो भगवान के सत्संग को ढूंढना है। हमारी ये बुद्धि मन को जो रंजन है, मन को भ्रमण कराना, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये देखें वो देखें। जैसे अभी होली हो रही है, अभी होली में लोग कितना घुसते हैं उसमें जाकर, भीड़ में बहुत आनंद लूटते हैं, स्वसुख की वांछा बहुत अधिक है। पुराने पुराने घर से खेल कर आए हैं तो वो रहती है भीड़ भाड़ में, घुसे हैं, हमको भी डालें, हम भी डालें, और बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें इस होली उत्सव कैसे भगवान ने मनाया होगा उसके चिंतन में ज़्यादा उत्तम हो जाएगा खेलने की जगह पर। इसलिए जो जीव गोस्वामी ने भी इस बात पर मतलब ऐसे ही संदर्भ है कि साधकों को बहुत अधिक भीड़ भाड़ के स्थानों पर नहीं प्रवेश करना चाहिए। अधिक भीड़ भाड़ होने पर इस प्रकार के जो होते हैं जिसमें स्वसुख की कामना अधिक, उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव भगवान का हर जगह मनाने से लाभ ही लाभ है, लेकिन उसके अंदर जाकर के खुद खेल में रच जाना और उससे समस्या होगी, क्योंकि स्वसुख ढूंढने लगता है फिर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से, पुरानी जो अभ्यास है वो आने लगते हैं प्रकट होकर के। तो इसीलिए ये ध्यान देने की बात है। और इसीलिए तस्माद एकेन मनसा, एक मन से, केवल एक मात्र एक मन से, एकेन मनसा का मतलब जितने भी ज्ञान कर्म आदि है उससे शून्य होकर के भगवान का ही कीर्तन करना है, श्रवण करना और स्मरण करना है, तब जाकर के भक्तों के मुख के द्वारा कही गई जो कथाएं हैं वो जितना धीरे धीरे सुनते जाएंगे आगे जाकर के अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे। फिर हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, शुरू में प्रारंभ में हमें जाकर के प्रवेश कराना है मन को, बाद में तो कृष्ण स्वयं आकर के अंतःकरण को धुल देंगे और फिर भक्ति का उदय हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये जानना जो, लेकिन यहाँ पर बात यही है, अब यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं इस तात्पर्य में कि इन सब चीज़ों के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो ये जानना है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि क्यों हम कथा सुने, किसके लिए कथा सुने। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति इस चीज़ से अनजान है, जो समझ चुका है, जो जानता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को जिसने समझा वो भगवान का कीर्तन करेगा, वो भजन करेगा। जिसने आत्म तत्व को समझा ही नहीं है उसके लिए कीर्तन भजन आदि की बात ही समाप्त हो जाती है, वो क्यों करेगा, तो कहेगा फालतू है, सब बकवास है। इसलिए लिखते हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य मायावादियों जैसा नहीं लेना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, यदि मैं ही वो ब्रह्म हूँ तो मैं सर्वज्ञ हो जाऊँगा, है ना। आपसे कभी कोई मिला है और बोले कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा वेद उपनिषदों में लिखा है कि मैं ब्रह्म, मैं मतलब मैं आत्मा, और ब्रह्म मतलब जो परमेश्वर, वो मैं ही हूँ। तो वेद में मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आता है, यह सर्वज्ञ सर्ववित, ब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्म कौन, तो जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। रिपीट कर दिया, सर्ववित का मतलब भी वही है जो सर्वज्ञ है। तो कहते हैं या सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञानमयम तपः। कोई व्यक्ति कभी मिले बोला हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आपसे बोला अच्छा तो आप ब्रह्म हैं, इसका मतलब आप सब कुछ जानते होंगे, पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के अंतःकरण में क्या चल रहा है वो भी जानते होंगे, कल क्या होने वाला है और आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ सब पता होगा, क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा है कि जो सब कुछ जानता है। तो या तो फिर आप ब्रह्म होंगे नहीं आप फिर ब्रह्म में होंगे, इसीलिए और क्या, मैं ब्रह्म हूं मैं ही वो परमात्मा हूं, तो परमात्मा का तो मतलब ये हो गया कि वो सब कुछ जानने वाला है, और जब मैं ऐसा कहता हूं कि मैं ब्रह्म हूं तो इसका मतलब मैं सब कुछ जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान है ना। जैसे परमात्मा ईश्वर सबकी बुद्धि वृत्ति के द्वारा सर्वज्ञ है, भगवान कैसे सर्वज्ञ है, सबकी बुद्धि वृत्ति के द्वारा। जैसे स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न जब देखता है तो स्वप्न देखते समय खुद को राजा भी बना देता है, भिक्षुक भी बना देता है, पशु भी बना देता है, सब कुछ बना देता है, वस्तुओं को भी देखता है, सब कुछ देखता है। और कौन देखता है, एकमात्र वही देखता है, वही राजा के रूप में बोलता सुनता है, वही भिखारी के रूप में बोलता सुनता है। तो मतलब एक ही व्यक्ति अपने आप को ऐसा फैला दिया और उनके माध्यम से स्वयं सबका दृष्टा होता है। इसी प्रकार से परमात्मा है, सबकी बुद्धियों के द्वारा अपने आप को प्रविष्ट करा करके वो सर्वज्ञ बना बैठा है। तो या तो फिर तुम सर्वज्ञ हो तो फिर ईश्वर हो, और नहीं तो फिर ब्रह्म में हो, ब्रह्म तो नहीं हो। तो ब्रह्म का मतलब मैं ब्रह्म का अंश, अंश का तात्पर्य होता है शक्ति, टुकड़ा नहीं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इस प्रकार से नहीं है, कोई भी शक्ति टुकड़ा नहीं होती है, किसी भी व्यक्ति की शक्ति ये तो ईश्वर की शक्ति है, और भगवान की शक्ति जो है वो टुकड़ा नहीं है, किरणों के स्थानीय है वो, जैसे किरण होती है ना किरण, तो जीव को किरणों के समान कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया जैसे नमक का ढेला टुकड़ा टुकड़ा ऐसा कटा कटा। यदि ऐसा कहेंगे कि आत्मा कटा कटा है तो ये जो बात बोली है भगवद गीता में अछेद्य अदाह्य, जो अछेद्य है इसका मतलब उसको छेदा गया तब तो टुकड़े टुकड़े हो गए, कई थे बहुत, श्री कृष्ण की शक्ति को काट दी गई, तो शक्ति कभी कटती नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अचिंत है, उसको समझना कि किस प्रकार से वो शक्ति होने के कारण से, एक भगवान की बहुत शक्तियाँ हैं तो एक शक्ति वो भी है, तो एक शक्ति माने एक अंश, इसके लिए उसको अंश शब्द से कहा। इसलिए जो जीवात्मा है वो भगवान का श्री कृष्ण का डायरेक्ट अंश नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अंश नहीं है, जैसे यहाँ पर कहा गया कि भिन्न अंश है वो। भिन्न अंश का मतलब क्या हुआ, अलग अलग, और एक होता है स्वांश। यदि जीव श्री कृष्ण का डायरेक्ट अंश है, श्री कृष्ण क्या अंतरंगा शक्ति से युक्त जो पर्सनालिटी है उसी का नाम श्री कृष्ण है, अंतरंगा शक्ति समाप्त है तो श्री कृष्ण क्या करेंगे फिर, फिर उनकी लीला सौ जितने भी सौकौमार्य सौंदर्य आदि और ईश्वरत्व आदि वो खत्म हो गया। तो इसलिए श्री कृष्ण मतलब क्या, जो अंतरंगा शक्ति विशिष्ट शक्तिमान का नाम है श्री कृष्ण, तो उनके जो अंश होंगे उस समय के उनका नाम होता है स्वांश, माने भगवान विष्णु इत्यादि जितने और भी जितने भी हैं भगवान के अपने अंश, उनमें उनके बराबर शक्ति होती है। जो विभिन्न अंश होते हैं वो तटस्था शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अर्थ अंश हैं। गीता में लिखा ना ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा अंश है, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं समझना, मेरा अंश तो विष्णु भी है और मेरा अंश तो जीव भी है, तो दोनों हैं, लेकिन अंश अंश में भेद है। अंश में क्या भेद है, विष्णु भी ममई वांश है, वो भी उनका अंश है, लेकिन अंतरंगा शक्ति से युक्त श्री कृष्ण का अंश है, और जो जीव है वो तटस्था शक्ति से युक्त श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए दोनों में श्री कृष्ण है। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी कैसे, अंश शक्तियां अनुपूर्वी हैं, मतलब एक के बाद एक, हर एक शक्ति एक समय में प्रकट होती है, कभी भी श्री कृष्ण की अनंत शक्ति हैं, लेकिन एक शक्ति एक समय में प्रकट होती है और उनके साथ रहते हैं, हर समय सारी शक्तियां एक साथ प्रकट नहीं होती हैं कभी भी, ऐसा भागवत ध्रुव महाराज की स्तुति में है कि शक्तियां एक एक करके आती हैं। तो जिस समय श्री कृष्ण तटस्था शक्ति से युक्त होते हैं तो उसी का अंश ये जीव हम लोग कहलाते हैं, और वो जीव वो तटस्था शक्ति वाले भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक सदा से मुक्त होते हैं और एक सदा से बद्ध होते हैं। जो गरुण आदि पार्षद हैं वो सदा से मुक्त हैं, भगवान के उन्मुख हैं, और हम लोग सब सदा से बहिर्मुख हैं। उनका शरीर गरुण आदि का अंतरंगा शक्ति से बना है, उनकी भी आत्मा अलग है। ये नहीं समझना है कि वहाँ आत्मा जा करके ऐसा बढ़ गई। कई हमारे प्रवक्ता लोग बोल देते हैं कि आत्मा है, वहाँ जा करके आत्मा और शरीर में अंतर नहीं रह जाता है, गोलोक में जा करके, वैकुंठ में जा करके। ऐसा नहीं है, वहाँ भी जा करके आत्मा और शरीर, जैसे यहाँ पर कैसा शरीर है आत्मा को, माया का 24 तत्वों वाला, और वहाँ जा करके एक तत्व वाला शरीर मिलेगा। कौन सा? चिन्ह में। लेकिन एक तत्व में उसमें भी 24 रहेंगे, आँख कान नाक। हो सकता है विष्णु लोग गए तो दो हाथ और आ गए तो कितने हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। अभी तो हाथ पैर जो गिनेंगे तो 5 गिने जाएंगे, और वहाँ पर जाएंगे तो 2 और बढ़ा दे जाएंगे, तो इसलिए फिर 26 हो जाएंगे शरीर शरीर। तो अंतरंगा शक्ति वाला शरीर मिलता है, ये भागवत में लिखा है। 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 34वां श्लोक है, उसमें लिखा है कि जो लोग ऊपर जाते हैं तो उनको शरीर की प्राप्ति होती है। तो शरीर की प्राप्ति होती है, असु से विहीन होता है शरीर, प्राण से विहीन होता है, ये इंद्रियां नहीं रहती हैं, ये वाला प्राण नहीं होता है, लेकिन शुद्ध सत्व देह होता है। तो इस प्रकार से आत्मा को भी प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण के हम अंश हैं, लेकिन कैसे? तटस्था शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के। एक जज है, एक जज मान लीजिए, जिस समय जज न्यायालय में बैठ करके न्याय करता है, तो उस समय जब न्याय करते समय कोई व्यक्ति कटघरे में जब खड़ा है तो उसके प्रति उस व्यक्ति की शक्ति कौन सी जागृत होती है? न्याय परायणता। तो उस समय वो जज न्याय से युक्त होकर के परिणाम घोषित करता है। वही व्यक्ति जब घर में जाएगा तो दया से युक्त हो जाएगा, तो उस समय यहाँ दया नहीं दिखा सकता है, यहाँ पर न्याय करना पड़ेगा। तो जिस समय वो जज न्याय परायणता से युक्त हुआ तो जज के रूप में कृपा किया, दंड दिया, और घर पर गया तो दया से युक्त हो जाता है, तो दया कर देगा किसी पर, उस समय न्याय नहीं दिखा सकता है। तो इसी प्रकार से समझिए, या ऐसा समझिए, जैसे मान लो आप बैठे हैं अभी, अभी सब लोग सत्व गुण से आवृत हैं, तो सत्व गुण से आवृत है इसलिए जागे हुए हैं। थोड़ा शाम होगा, काल भी रजोगुण आवृत होगा, तो थोड़ा थोड़ा से शरीर में थकावट आने लगेगी, और धीरे धीरे तम जब बढ़ेगा तो पूर्ण रूप से निद्रा आ जाएगी। मतलब जिस समय निद्रा से युक्त हुए, तमोगुण से युक्त हुआ हम लोग, यदि तमोगुण से युक्त होते हैं तो क्या होता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि, क्रोध आदि सब युक्त हो जाते हैं। जिस समय रजोगुण से युक्त होते हैं तो उस समय चंचलता आदि आ जाते हैं गुण, और जिस समय सत्वगुण से युक्त होते हैं तो जागृत होते हैं, कुछ ज्ञान की अवस्था होती है। तो सोचिए, तीनों गुणों से अलग अलग समय में युक्त होने वाला एक ही जीवात्मा अलग अलग अनुभव करते हैं कि नहीं, है ना? तमोगुण से युक्त हो गए तो निद्रा आ गई, आलस्य आ गया, क्रोध आ गया, इस प्रकार के भाव आते हैं। सत्वगुण से हो गए युक्त, यदि जिस समय सत्वगुण बढ़ जाता है तो क्या होता है? ज्ञान होता है। इसी प्रकार से भगवान भी जिस समय अंतरंगा शक्ति से युक्त होते हैं तो समस्त विष्णु लोक और जितना वैकुंठ लोक गोलोक लोक सब प्रकट होता है, और जिस समय तटस्था शक्ति युक्त होते हैं उस समय सारी जीवात्माएँ होती हैं। लेकिन एक दिन पैदा किया ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कहीं पर भी, अनादि सनातन सृष्टि है, सनातन। एक दिन हुई ऐसा नहीं, एक दिन हुई तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगे, सदा से है इस प्रकार की कंडीशन, और ये आगे तक नहीं रहेगी। ये सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं, मतलब इस देह को समाप्त कर सकते हैं। माया का समाप्ति नहीं होगी, माया की समाप्ति नहीं होगी, देहों की समाप्ति हो जाएगी। माया तो नित्य है, वो अवस्थान करेगी किसी न किसी रूप में। तो इस प्रकार से यहाँ जो बताया कि विभिन्नांश जीव है उसका धर्म है कि भगवान की सेवा करना। एक व्यक्ति अभी पूछ रहे थे कि सेवा करना जीव का, महाप्रभु ने कहा है कि जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो जीव का नित्य दास कैसे हो सकता है? सीधी सी बात समझिए, जीवात्मा किसी भी रूप में रहे, यदि गोलोक में भी है, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये चार रस और शांत पाँचवा नीचे का, इनमें किसी में भी रहे, इन सब में रहने के बाद भी दास्य सब में रहेगा। समझ में आया? अब वो कोई कहे कि माधुर्य वाला तो दास्य भक्ति नहीं है, वो तो माधुर्य भक्ति है। नहीं, गोपियां बोलते कि नहीं, ते शुल्क दासिका, हम आपके अशुल्क दास। इसी प्रकार खिनंद बाबा बोलते हैं, इसी प्रकार सखा लोग सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं श्री कृष्ण की। तो सेवक जो भाव है दास्य का, वो सब जगह है। इसलिए जीव का वास्तविक स्वरूप दासी है, सेवा करना। अब वो किस रूप में सेवा, वो माधुर्यमय सेवक है, दास्यमय सेवक है, वात्सल्यमय सेवक है, या सख्यमय है, या उसके नीचे है, वो एक अलग मैटर है। तो इसलिए हमारा एकमात्र लक्ष्य है अजामिल बनना, है ना, अजामिल से अजामिल बनना। अजामिल की यात्रा अजामिल तक ही रहेगी, तभी जा करके हमारी सफलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद ने कृपा किया कि कुछ चार छह शब्द बोलने के लिए दे दिए, नहीं तो श्लोक तो एक सामान्य बात बोल रहे थे, इसमें कहाँ से आए कैसे आए। तो प्रभुपाद की कृपा है, जो तात्पर्य लिख दिए तो उसमें दो चार हम लोग यहाँ वहाँ गप लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका तात्पर्य यही है कि जो भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा, स्मरण केवल मरते समय वाला नहीं, पहले से इसलिए उसका अभ्यास अच्छा हो जाना चाहिए। मरते समय याद आए चाहे न आए, मुक्त पहले ही हो जाओ। इसलिए गीता में भगवान जो बोलते हैं ना एक श्लोक, मुक्त्वा कलेवरम, संस्कृत में मुक्त्वा का मतलब ही होता है छोड़कर, छोड़ा कर नहीं। जो महापुरुष है वो यमयम वापी स्मरण भावम, नहीं नहीं उसके पहले क्या है, वो अंतकाले चमामेवम स्मरण मुक्त्वा। तो स्मरण मुक्त्वा, मुझे स्मरण करते हो मुक्त करके शरीर को, कलेवर देह को छोड़ करके, ना कि जबरदस्ती छुड़ा करके जाता है जो महापुरुष है, क्योंकि वो जीवन अवस्था में ही भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। तो प्रयास ये करना है कि इसी जीवित अवस्था में ही भगवान के प्रति थोड़ा सा स्नेह प्रेम जागे, तो हमको सही शुद्ध जो भाव और प्रेम उसकी प्राप्ति हो, तब कल्याण होगा। बोलिए ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।